नमस्कार भारत, तारीख 25 दिसंबर दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव आज मिलेंगे अपने घर वालों से। इस्लामिक स्टेट की हार के बाद इराक के मोसुल में पहली बार मना क्रिसमस। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे जयराम ठाकुर, क्या ये धूमल युग का अंत है?
वो कांग्रेस में भी वीरभद्र युग का खात्मा हो गया है एक तरह से, और बीजेपी में भी एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, धूमल युग से खत्म हो गया है हिमाचल में।
वुसतुल्लाह खान से सुनिएगा कि जमाने पहले कैसे क्रिसमस मनता था पाकिस्तान में। साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी होगा, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप राय से। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव आज इस्लामाबाद में अपने परिजनों से मिल सकेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मुलाकात के बाद उसी दिन भारत वापस लौट जाएंगे। इराक के खाल्डिन कैथोलिक चर्च के वयोवृद्ध धर्मगुरु लुइस रफायल साको ने मोसुल छोड़कर गए ईसाइयों के वापस आने की उम्मीद जताई है। मोसुल में सालों बाद पहली बार क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ाई के कारण शहर की अधिकांश इमारतें तबाह हो गई हैं। मोसुल में जिस चर्च में क्रिसमस पर्व मनाया गया उसे दोबारा बनाया गया है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया के रोमन कैथोलिकों से प्रवासियों के दुखों को नजरअंदाज न करने की अपील की है। क्रिसमस के मौके पर वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित सभा में भाषण देते हुए उन्होंने बाइबल में लिखी मैरी और जोसेफ की कथा सुनाई, जिसके अनुसार जब मैरी जीसस को जन्म देने वाली थी तो उन्हें बेथलहम में पनाह नहीं मिली। पोप फ्रांसिस ने कहा कि प्रवासियों का सम्मान ईसाइत का अभिन्न हिस्सा रहा है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी ने कहा है कि मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी हस्ताक्षर उन्होंने जुटा लिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें फिर भी अयोग्य ठहराया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि रूस के 20 शहरों में उन्हें इतना समर्थन हासिल है कि वो व्लादिमीर पुतिन के संभावित विकल्प बनकर उभरे हैं। पुलिस ने मॉस्को में उनकी दूसरी रैली की इजाजत नहीं दी है, जबकि चुनाव आयोग ने एक धोखाधड़ी के मामले में उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया है। वो इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं। उम्मीदवार के रूप में खुद को पंजीकृत कराने के लिए वो समर्थकों के साथ आयोग पहुंचे थे।
Сегодня мы вот в этих бумажных коробках подаем документальное свидетельство.
आज इन दस्तावेजों को हम जमा करने जा रहे हैं। ये एक बड़े जन आंदोलन का सबूत है। आज हम इसे जमा कर रहे हैं। हमारा कहना है कि चुनाव के लिए हमें पंजीकृत किए जाने से अनाकानी करना असंभव है। हमारे बिना ये चुनाव चुनाव नहीं है। हम अंदर जा रहे हैं और इन दस्तावेजों को सौंपेंगे। ये थे एलेक्सी नवाल्नी के शब्द। वेनेजुएला की जेलों में बंद 80 विपक्षी कार्यकर्ताओं के पहले समूह को रिहा कर दिया गया है। इसे क्रिसमस के मौके पर विश्वास बहाली का कदम माना जा रहा है। कराकास में टेलीविजन के सामने 13 कैदियों के साथ दिखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रमुख टेल्सी रोड्रिग्स ने उन्हें हिंसा न करने के लिए कहा, साथ ही क्रिसमस की बधाई भी दी। अब तक रिहा किए गए 36 कैदियों में एक पूर्व प्रांतीय मेयर अल्फ्रेड रामोस भी हैं।
मुझे पूरी तरह मनमाने तरीके से कैद करके रखा गया था। मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। मुझे मेयर ऑफिस से गिरफ्तार किया गया, उस ऑफिस में जहां लोगों ने मुझे चुनकर पहुंचाया था। ये थे अल्फ्रेड रामोस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ट्यूनीशिया ने अपनी राजधानी में संयुक्त अरब अमीरात की सभी उड़ानों के उतरने पर पाबंदी लगा दी है। दो दिन पहले ट्यूनीशिया की सरकार ने कहा कि यूएई एयरलाइन ने ट्यूनीशियाई महिलाओं को अमीरात जाने पर पाबंदी लगा दी थी। एयरलाइन का कहना है कि उसने सुरक्षा कारणों से ऐसा किया था। साथ ही उसने कहा है कि यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। तुर्की प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने आने वाले साल में 1,00,000 सरकारी कर्मचारियों को भर्ती किए जाने की घोषणा की है। इनमें 20,000 शिक्षक भी शामिल हैं। पिछले साल जुलाई में हुए तख्तापलट की असफल कोशिश के बाद करीब 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया था। इनमें 2,700 वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें रविवार को बर्खास्त किया गया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत अभिनंदन। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने सुना, पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आज इस्लामाबाद में अपने घर वालों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो बड़ी खबर यह है। दिनेश उप्रेती स्टूडियो मौजूद हैं। दिनेश, क्या कहा गया है?
देखिए, जो पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जो बताया है उसके मुताबिक दोनों एक वाणिज्यिक उड़ान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी कि जाधव की पत्नी और उनकी माँ, और वो अब आज ही वापस भी लौट आएंगे। इस्लामाबाद उच्चायोग में जो भारत के उप उच्चायुक्त हैं जेपी सिंह, वो भी जाधव की पत्नी और माँ के साथ मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। दरअसल ये जो पाकिस्तान का विदेश कार्यालय है उसके प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कल रात ट्विटर पर लिखा था कि भारत ने हमें बताया है कि कमांडर जाधव की माँ और पत्नी 25 दिसंबर को एक वाणिज्यिक उड़ान से इस्लामाबाद पहुँचेंगे और उसी दिन लौट जाएंगे।
तो ये कार्यक्रम है उनके। हमारे श्रोताओं को जरा ये मामला बताइए कि मामला ये क्या था और इसमें जो पेच फंसा हुआ था वो क्या था?
दरअसल 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में और बाद में उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था कि गिरफ्तार किया था। इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान की ही एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा सुनाई थी। भारत इसके खिलाफ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था और वहाँ से जाधव की फांसी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती। लेकिन आपको बता दें, अपने सुनने वालों को बता दें कि ये कुलभूषण जाधव का जो मामला है ये बहुत दिनों से फंसा हुआ मामला था और पाकिस्तान भारत में जो रह रहे हैं उनके परिजन उनको वीज़ा नहीं दे रहा था। हाल ही में उन परिजन यानी कि उनके संबंधियों को वीज़ा मिला और उसके बाद पाकिस्तान उनसे मुलाकात कराने के लिए तैयार हो गया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
कभी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के गढ़ रहे इराक के मोसुल में सालों बाद पहली बार क्रिसमस मनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी फौजों ने हाल के दिनों में ही शहर पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की थी। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए संदीप राय से।
इराक के मोसुल में सालों बाद पहली बार क्रिसमस पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर इराक के खाल्डियन कैथोलिक चर्च के वयोवृद्ध धर्मगुरु लुइस रफाइल साको ने उन ईसाइयों के वापस अपने घरों को लौटने की उम्मीद जताई है जो हिंसा की वजह से अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। ये इलाका सालों से कथित इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के कब्जे में रहा है और सरकारी फौजों ने हाल के दिनों में इस शहर पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है। धर्मगुरु ने बीबीसी को बताया कि चर्च भरा हुआ था और मुसलमानों ने प्रार्थना में साथ साथ हिस्सा लिया। शहर में ईसाई लोगों के घरों को इस्लामिक स्टेट ने नष्ट कर दिया था। धर्मगुरु ने उम्मीद जताई कि एक बार घर दोबारा बन जाए तो लोग वापस लौटेंगे। मोसुल में जिहादियों के शासन के दौरान गिरजाघर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। क्रिसमस मनाने के लिए शहर के ईसाई यहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। इस्लामिक स्टेट के राज में ईसाइयों के धार्मिक क्रियाकलाप पर पाबंदी थी और बहुत सारे ईसाई उत्पीड़न के डर से शहर छोड़कर चले गए थे। धर्मगुरु साको ने लोगों से मोसुल और दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। हमारा संदेश शांति का संदेश है। ईसा मसीह धरती पर शांति के दूत थे और इस शांति की ईसाई मुसलमान और हर इंसान को जरूरत है। बिना शांति के जीवन संभव नहीं। हमारा संदेश है कि जो कुछ हो चुका है उसके बाद हमें शांति के लिए दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। ये थे इराकी धर्मगुरु लुइस रफाइल साको के शब्द। क्रिसमस के मौके पर मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रार्थना में शामिल फारूक मालको सेंट पॉल चर्च में मौजूद थे। ये चर्च शहर के पश्चिम में अल मुहांदसिन जिले में स्थित है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप को ये हमारा जवाब है कि ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए हम एक साथ इकट्ठा हुए हैं। ईमान खादेर यहाँ से गए लोगों के वापस आने की उम्मीद जताते हैं। हम मुस्लिम समुदाय से हैं और आज अपने ईसाई भाइयों के साथ इस पवित्र मौके पर नीनेवेह प्रांत में और मोसुल शहर में एक साथ खुशी मना रहे हैं। ये उनकी और उनकी सभ्यता की जगह है, उन्हें वापस आना ही होगा। ये थे ईमान खादिर के शब्द। मोसुल के इस चर्च को दोबारा बनाया गया है। धर्मगुरु इसे एक चमत्कार से कम नहीं मानते।
धर्मगुरु कहते हैं,
इट वॉज लाइक ए मिरेकल, द पीपल हु प्रिपेयर्ड द चर्च,
ये चमत्कार जैसा है। जिन लोगों ने चर्च बनाया वे मुसलमान थे, इसी शहर के युवा मुसलमान। लेकिन इस मौके पर चर्च मुसलमान और ईसाई दोनों से भरा हुआ है। वे साथ साथ शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद थे। ये थे ईसाई धर्मगुरु साको के शब्द। इस्लामिक स्टेट के जाने के बाद शहर की जिंदगी फिर से अपनी पटरी पर लौट रही है। शहर का पुनर्निर्माण एक चुनौती है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ के निवासियों के लिए क्रिसमस एक नई उम्मीद लेकर आया है।
कार्यक्रम में आगे सुनेंगे वुसतुल्लाह खान से कि कैसे वो अपने बचपन में पाकिस्तान में क्रिसमस मनाया करते थे।
बीबीसी से वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए,
ये नूर कैसा है राख का सरम पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने,
मीना कुमारी का सफर रेहान फजल की जुबानी। साल 2017 में बैडमिंटन में भारत को बड़ी मेहनत से मिले दो जगमगाते सितारे।
This 2017 of course special है। I won some of the super series and world championship silver।
पीवी सिंधु और के श्रीकांत की कहानी मले नीरव की जुबानी।
अभी करंट वर्ल्ड नंबर वन को हराया और ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है मेरे लिए।
मोहनलाल शर्मा बताएंगे 2017 में किस तरह उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध के बादल मंडराते रहे।
मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करता,
क्योंकि पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया है, प्रस्ताव करूंगा तो वही करूंगा जो पार्टी का निर्णय है।
हिमालयन मिस्टेक हुआ है।
भारत के वो राजनेता जो पार्टी के शिखर पर पहुंचकर भी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। और भी बहुत कुछ बीबीसी वर्षांत कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुनिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक,
यानी कि ये वर्षांत श्रृंखला आज शाम कार्यक्रम दिन भर से शुरू होने वाली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के एक हफ्ते बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके जयराम ठाकुर, बीजेपी के विधायकों ने कल दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में अपना नेता चुना। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए आदर्श राठौर से उनके चुने जाने की कहानी।
ये आवाज है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर बज रहे लोकगीतों की, जिन पर थिरकते हुए जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मंडी जिले की सिराज सीट से विधायक जयराम ठाकुर को सीएम चुने जाने का ऐलान किया, राजधानी शिमला में राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ के बाहर जुटे उनके समर्थकों ने पटाखे छोड़े और नाच गाकर जश्न मनाया। दरअसल आखिरी समय तक संशय बना हुआ था कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन होगा। पीटर हॉफ के अंदर बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों के साथ मंथन कर रहे थे और बाहर मैदान में समर्थकों के बीच अटकलों का दौर जारी था। मगर रविवार को तस्वीर साफ हो गई जब केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने जयराम ठाकुर के नाम का ऐलान किया।
श्री जयराम ठाकुर जी का ही एक नाम सब ओर से प्रस्तावित और समर्थित हुआ है, कोई अन्य नाम तो और प्रस्तावित नहीं होने वाला है, कोई प्रस्ताव दूसरा सामने विद्यमान नहीं है, इसलिए श्री जयराम ठाकुर जी को विधानमंडल दल का।
चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था। धूमल खुद चुनाव हार गए, लेकिन समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का नाम भी चल रहा था, मगर आखिर में जयराम ठाकुर के नाम पर ही मुहर लगी। ठाकुर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी अगुवाई में ही पार्टी ने 2007 के चुनावों में जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। विधायकों की बैठक में नेता चुने जाने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा,
जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमसे इस जनादेश के साथ व्यक्त की है, उस उम्मीद को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ में जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी जो एक बहुत बड़ी उम्मीद हिमाचल प्रदेश में इस सरकार से रखी है, उसको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।
जयराम ठाकुर पांचवी बार विधायक चुने गए हैं। वो 27 दिसंबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ लेंगे। उनके शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे।
आदर्श राठौर की आप रिपोर्ट सुन रहे थे। जब बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल चुनाव हारे थे तो ये बात उठी थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सीएम बनाया जा सकता है। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के सामने धूमल समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने की मांग को लेकर नारेबाजी की थी। हालांकि धूमल ने बाद में कहा कि मैं सीएम पद की दौड़ में नहीं हूं। एक दिन बाद जयराम ठाकुर को सीएम चुन लिया गया। जयराम ठाकुर का भविष्य क्या और वो कैसे चुने गए, हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने धर्मशाला में वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार से बात की और पूछा कि क्या जयराम ठाकुर की ताजपोशी को धूमल युग का अंत समझा जाए।
हिमाचल प्रदेश में एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हुई है इस चुनाव परिणाम के बाद। वो कांग्रेस में भी वीरभद्र युग का खात्मा हो गया है एक तरह से, और बीजेपी में भी एक नई तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं हम कि धूमल युग दो बारी मुख्यमंत्री यहां करे तो इस तरह से खत्म हो गया है हिमाचल में।
प्रेम कुमार धूमल के हारने के बाद क्या कहीं से लग रहा था कि जयराम ठाकुर सीएम बन सकते हैं, क्योंकि पहले से जेपी नड्डा का नाम चल रहा था?
नड्डा का नाम तो कई महीने पहले से ही था, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ और आखिरी टाइम पे प्रेम कुमार धूमल को सीएम प्रत्याशी बना दिया गया। तो जब धूमल हार गए तो उसके बाद एक बार फिर से ताना बाना जो नड्डा के आसपास ही दोबारा से शुरू हो गया बुनना, लेकिन उसमें एक नाम जो आया वो आया था जयराम ठाकुर का। और जिस दिन धूमल जी हार गए उसी दौरान ही जयराम ठाकुर पहला नाम था कि अगर बीजेपी हाईकमान, जैसा कि पहले कहा था कि चुने हुए विधायकों में से ही मुख्यमंत्री होगा और उस पर अगर बीजेपी हाईकमान कायम रहती है तो फिर जयराम ठाकुर ही एकमात्र नाम था। जयराम ठाकुर के अलावा अगर बाकी जातीय समीकरणों की हम देखें और वरिष्ठता की हमने लेना हो कि वरिष्ठ आदमी बनेगा तो जयराम ठाकुर के अलावा कोई और था नहीं। एबीवीपी से शुरू किया इन्होंने अपना करियर, उसके बाद ये तमाम पदों पर रहे और प्रदेशाध्यक्ष तक बने बीजेपी के और मिनिस्टर रहे, तो लगातार 5 बार विधायक भी बने हुए हैं। ये तमाम चीजें सारी जयराम ठाकुर के ही पक्ष में जाती थी। अब आप इसको जाति समीकरण के हिसाब से कहना चाहो तो कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरी जातियों में से कुछ इस तरह का करना था तो फिर वो जयराम ठाकुर के मुकाबले थे नहीं। उसमें कोई एक बारी का जीता हुआ, कोई दो बारी का जीता हुआ, कोई उस हिसाब से एक्टिव नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जातीय समीकरण वाला मसला है।
जयराम ठाकुर कैसे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हो गए और क्यों चुने गए, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार। और यहीं पर कार्यक्रम में अब अखबार का जिक्र करना जरूरी है। अखबार के पन्ने पलट चुके हैं। संदीप राय, क्या कह रहे हैं आज के अखबार? मैं तो देख रहा हूँ हर जगह जयराम हिमाचल के नए ठाकुर, इस तरह की हेडलाइन लगी हुई है।
जी मोहनलाल जी, आज के लगभग सभी अखबारों में दो खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हैं। एक है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए जयराम ठाकुर का चुना जाना, और दूसरी खबर है तमिलनाडु में जयललिता की मौत के बाद खाली हुई सीट पर बागी नेता टीटीवी दिनाकरण की जीत की। अब एआईडीएमके के नेता के तौर पर वो दिनाकरण अपनी दावेदारी भी जताने लगे हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें हैं। जैसे एक खबर है कि त्योहारों पर 20% तक महंगा हो सकता है रेलवे का किराया। ये दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें कहा गया है कि रेलवे की डायनेमिक फेयर प्राइसिंग स्कीम लागू हो सकती है जिसमें स्पीड के हिसाब से जो जितनी जल्दी ट्रेन यात्रा को पूरा करेगी उसकी उसका किराया उतना ज्यादा होगा।
दिवाली है, दुर्गा पूजा है, छठ है, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर जो रेल यात्रा है वो महंगी हो सकती है डायनेमिक प्राइसेस के आधार पर, जो कि राजधानी और शताब्दी में पहले से लागू है।
दैनिक भास्कर की ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिसमें कहा गया है कि ये आश्वासनों की सरकार है, संसद में कामों पर आश्वासन देने में मोदी सरकार यूपीए से 2 गुना आगे है। आंकड़ा ये दिया गया है कि यूपीए ने 10 साल में पेंडिंग छोड़े 700 वादे और इधर 4 साल में ही 1900 वादों का आंकड़ा पार हो चुका है। ये दैनिक भास्कर की खबर है। हम आगे चलते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि हिरासत में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल बन गया है। एक संसदीय पैनल ने इस पर चिंता जताई है कि पूरे देश में हिरासत में बलात्कार के कुल मामलों का 90% सिर्फ इसी राज्य
उत्तर प्रदेश
से संबंधित है। पैनल ने एनसीआरबी के 2015 के आंकड़ों का हवाला दिया है। द स्टेट्समैन की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक बिल को वापस लिए जाने की मांग की है। बोर्ड ने कहा है कि ये बिल संविधान के खिलाफ है और महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप राय, बहुत कम समय में बहुत सारी खबरें समेटने के लिए। और अपने बचपन में किस तरह से वुसतुल्ला खान पाकिस्तान में क्रिसमस मनाया करते थे, तब से लेकर आज तक कितना माहौल बदल गया, सुनिए आज वो क्या कहते हैं अपनी इस डायरी में।
मैं पाकिस्तानी पंजाब के जिस शहर रहीम यार खान में 55 वर्ष पहले जन्मा, वहाँ एक ही चर्च था और अब भी है, सेंट एंड्रयूज कैथोलिक चर्च। इसमें बहुत हरियाली थी, इतने दरख्त के गर्मियों में भी ठंडक सी महसूस होती। मेरा पाठशाला चर्च के बिल्कुल सामने था। जब छुट्टी होती तो हम दो चार बच्चे इस चर्च का गेट उलांग के अंदर चले जाते, एक दूसरे के पीछे शोर मचाते दौड़ते और कभी कभी दरख्तों की छाँव में ही थोड़ी देर के लिए सो जाते। इस चर्च में एक फिलिपिनो नन थी हमारी दादी की उम्र की, वो हमें अपने कमरे की खिड़की से देखती तो पास बुलाती और कभी टाफियाँ तो कभी फल देते हुए कहती, अच्छे बच्चे शोर नहीं मचाते, खुदा को शोर पसंद नहीं। क्रिसमस की रात चर्च सुबह तक खुला रहता, उसे रोशनियों की दुल्हन बनाया जाता, कोई भी अंदर सर्विस में जाके खड़ा हो सकता था। बिल्डिंग के बाहर एक बड़ी सी मेज पे छोटे छोटे केक और झालर की शक्ल में फूल सजाए जाते, एक टंकी में चाय भर दी जाती, कोई भी ये केक खा सकता और चाय सुड़क सकता था। फिर हम बच्चे बड़े होते चले गए, फिलिपिनो नन भी कहीं चली गई, मैं रहीम यार खान छोड़ के कराची आ गया और वहाँ से लंदन चला गया। फिर किसी ने एक दिन बताया कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मंदिर तो कोई मिला नहीं, यदि चर्च पे गुस्सा निकाला गया और कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसका गेट तोड़ दिया। फिर 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो कुछ बलवाइयों ने इस चर्च को आग लगाने की कोशिश की, मगर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्रवाई की और आग बुझा दी, लेकिन वो यीशु मसीह की मूर्ति और सलीब टूटने से ना बचा सके। पिछले दिसंबर में मेरा बहुत दिनों बाद रहीम यार खान जाना हुआ। ये इत्तफाक है कि अगले दिन क्रिसमस पड़ रहा था। छोटे मामू मुझसे उम्र में 3 साल ही बड़े हैं। मैंने कहा, मामू चलो आज रात सेंट एंड्रूज चलते हैं, क्रिसमस केक खाएंगे। कहने लगे, तुम पागल हो गए हो क्या, गैर मुस्लिमों का माल खाओगे। मैंने कहा, मामू बचपन में तो तुम, मैं और दूसरे बच्चे खूब जा जा के केक ठूंसते थे और फिलिपिनो नन से टाफियाँ और फल भी लेते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है। कहने लगे, वो बचपन था मियाँ, हमें मालूम नहीं था कि गैर मुस्लिमों की बनाई चीज़ खाना और उनसे मेल जोल बढ़ाना हराम है। तुम अकेले जाना चाहो तो चले जाओ, मुझे क्यों गुनाहगार करते हो। मैं गुस्से में पैर पटकता खुद ही चल पड़ा। सेंट एंड्रूज चर्च वैसा ही था जैसा 50 साल पहले, बस इतना बदलाव आया था कि गेट बंद था और इसके बाहर खड़े कुछ युवा अंदर जाने वाले हर पुरुष, महिला और बच्चे की तलाशी ले रहे थे। मैंने इन तलाशी लेने वालों में से एक से मुस्कुराते हुए कहा, मैरी क्रिसमस। उसने घूरते हुए मुझसे पूछा, सर क्या आप मुसलमान हैं। मैंने पूछा, हाँ मगर तुम्हें कैसे पता चला। कहने लगा, सर यहाँ कोई क्रिश्चियन चर्च के गेट से बाहर अब मैरी क्रिसमस नहीं कहता।
तब का वक्त और आज का वक्त, कितना बदल गया है पाकिस्तान, बता रहे थे वुसतुल्ला खान अपनी डायरी में। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल भारत ने मुंबई में खेले गए तीसरे और आखिरी 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेहमान श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी। भारत ने जीत के लिए 136 रनों का लक्ष्य 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मनीष पांडे ने 32, श्रेयस अय्यर ने 30, दिनेश कार्तिक ने नाबाद 18 और महेंद्र सिंह धोनी ने भी नाबाद 16 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर श्रीलंकाई पारी तब लड़खड़ा गई जब उसके 6 विकेट केवल 85 रन तक गिर गए। वो तो असेला गुणरत्ने ने 36 और दसुन शनाका ने नाबाद 29 रन बनाकर श्रीलंका को 7 विकेट पर 135 रन जैसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचाया। भारत के जयदेव उनादकट ने 15 रन देकर 2 और और हार्दिक पांड्या ने भी 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही भारत ने ये 2020 सीरीज 3-0 से अपने नाम की। और अब समीक्षा। अपनी ही जमीन पर श्रीलंका को टेस्ट एक दिवसीय और 2020 सीरीज में मात देने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों को क्या दक्षिण अफ्रीका में मदद मिलेगी इस जीत की?
Congratulations on the win, the series win, and let's not forget your double 100 in that series. So India, the winning team in the series, Rohit Sharma, the captain, will take the trophy and India wrap up another title in this home season. So well done, India.
बधाई से शुरुआत और तारीफ से समाप्ति, और बात भी कुछ ऐसी ही है कि भारतीय क्रिकेट टीम हकदार भी है। श्रीलंका को क्रिकेट के तीनों प्रारूप में मात देने वाली भारतीय टीम की जीत के कई नायक रहे। टेस्ट सीरीज में विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, एक दिवसीय सीरीज में रोहित शर्मा, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल, तो 2020 सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा, ऐसे बरसे के छक्कों की गिनती कौन करे। लेकिन लगता है कि रोहित शर्मा के दिमाग में अभी से दक्षिण अफ्रीकी दौरे को लेकर घंटी बजने लगी है।
जब भी आप इंडिया के बाहर आप टूर पे जाते हो तो पिछले सीरीज का इम्पैक्ट काफी रहता है और वो मोमेंटम काफी हेल्प करता है आपको। एक विनिंग जो रिदम बना हुआ होता है टीम का, वो आप जब वहां पर जाते हो तो एक कॉन्फिडेंस होता है, बट वहां पर जाके आपको स्किल और जो टेक्निकली जो चेंजेस है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे कंडीशंस कुछ और होते हैं। उनके फास्ट बॉलर्स, उनके बॉलिंग अटैक अलग होगी श्रीलंका से। हम टेस्ट सीरीज जीते, ओडीआई सीरीज जीते और अभी T20 भी जीते, तो एज ए टीम हमारे लिए अच्छा रहा है।
श्रीलंका के खिलाफ तो हर खिलाड़ी जमकर खेला, लेकिन क्या ये वो श्रीलंका है जो कभी क्रिकेट के मैदान में जो झारू मानी जाती थी? लेकिन इस टीम ने तो क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का दिल ही तोड़ दिया।
मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ श्रीलंकन क्रिकेट का, क्योंकि मैं इन्हें कम से कम 35 साल से देखते आ रहा हूँ और कवर कर रहा हूँ श्रीलंकन क्रिकेट को। तो एक तरह से अफसोस भी होता है कि उनके पास टैलेंट भरपूर है लेकिन आत्मविश्वास अब बहुत कम है। बहुत से दिग्गज खिलाड़ी गए हैं लेकिन आप 2-3-4-5 साल तो नहीं निकल सकते रीबिल्डिंग में। कहीं ना कहीं आपको अच्छी टीम चुनना पड़ेगी। कोशिश यही होनी चाहिए कि फिर आप जीतना शुरू करें, वो हो नहीं रहा है। पैचेस में अच्छा खेलते हैं, 5 ओवर अच्छा खेलते हैं या 10-15 ओवर।
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अतुल वासन की बातों से भी लगता है कि वो श्रीलंका के खेल से संतुष्ट नहीं है।
चलिए कुछ कॉन्टेस्ट हो तो उस क्रिकेट लवर्स को मजा आता है, सिर्फ भारतीय टीम एक तरफा जीतती रहे और बार बार श्रीलंका के खिलाफ, इससे भी कुछ इसमें मजा नहीं है। बिना विराट कोहली के जीतने की भी आदत डालनी होगी।
अब श्रीलंका कमजोर साबित हुई तो उसमें भारत का क्या कसूर? लेकिन उसके खिलाफ दनादन बने रिकॉर्ड के बीच अगर भारतीय टीम आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में भी जमकर खेले और जीते तो भरोसा जमे कि घर के शेर अब बाहर ढेर नहीं होते। उधर बीते शनिवार से प्रीमियर बैडमिंटन लीग शुरू हो गई, लेकिन पहले ही दिन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल दाएं टखने में चोट के कारण कोर्ट पर नहीं उतरी। वैसे वो इस साल के अपने प्रदर्शन से खुश हैं।
साल ठीक ही रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आया और अच्छा मैचेस खेल रही हूँ। कमबैक सर्जरी के बाद डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हैप्पी टू विन वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल और टॉप 10 में आ गई हूँ, तो अच्छा फीलिंग है और मैं फिट रहना चाहती हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है।
देखना है साइना नेहवाल मैदान के बाहर अपनी फिटनेस की समस्या से कैसे निबटती है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और कार्यक्रम में से पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वाले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव आज इस्लामाबाद में अपने परिजनों से मिल सकेंगे। इराक के खालडियन कैथोलिक चर्च के वयोवृद्ध धर्मगुरु लुइस रफाइल साको ने मोसुल छोड़कर गए ईसाइयों के वापस आने की उम्मीद जताई है। पोप फ्रांसिस ने दुनिया के रोमन कैथोलिकों से प्रवासियों के दुखों को नज़रअंदाज न करने की अपील की है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी ने कहा है कि मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव अगर उन्हें अयोग्य ठहराया जाता है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वेनेजुएला की जेलों में बंद 80 विपक्षी कार्यकर्ताओं के पहले समूह को रिहा कर दिया गया है। इसे क्रिसमस के मौके पर विश्वास बहाली का कदम माना जा रहा है। ट्यूनिशिया ने अपनी राजधानी में संयुक्त अरब अमीरात की सभी उड़ानों के उतरने पर पाबंदी लगा दी है। तुर्की ने रविवार को 2700 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में वर्षांत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे। इस बीच पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त साथियों के साथ विदा दें। नमस्कार।